Recording in progress.
एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
Recording in progress.
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ إِلَى الْآخِرِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو کل کی کلاس میں ہم نے یہ آیات پڑھ لی تھی، ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر کے ساتھ، اور آج معروف مسائل ان کے پڑھنے تھے. سورہ حج چل رہی ہے ہماری اس رمضان تفسیر کلاس کے اندر، اور وہ معروف القرآن کی جلد نمبر 6 سے ہم پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ ہم تفسیر ہی پڑھتے ہیں جو کہ ایک جید عالم دین نے اور مستند عالم دین نے کی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ درس تفسیر ہی کہلائے گا، درس قرآن بالواسطہ. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی درس قرآن نہیں، کیونکہ درس قرآن سے یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ جی آپ خود تفسیر کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم خود تفسیر نہیں کر رہے، بلکہ ایک بڑے مفسر قرآن کی جو تفسیر ہے اسی کو پڑھ رہے ہیں، اور سادہ الفاظ میں، اور اپنے احوال اور اپنے حالات واقعات اور دور کے حساب سے بس اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معارف و مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت جو ایک آیت کرتے ہیں ایکسپلین، کیونکہ معارف و مسائل میں وہ ایک ایک آیت کو لے کر کے نہیں چلتے، جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں ایک ایک آیت کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو معارف و مسائل میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں صرف حضرت نے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب، ٹھیک ہے، اس کی پہلے تفسیر بیان کری کہ زمین کی سیر و سیاحت اگر عبرت و بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہو تو مطلوب دینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دینی طور پر مطلوب ہے، ڈیزائرڈ ہے کہ سیر و سیاحت، سیر کا مطلب چلنا، سیاحت کا مطلب جو ہے وہ یعنی گھومنا پھرنا، جس کو ٹوریزم انگریزی میں کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس آیت میں زمین کی سیر و سیاحت جبکہ بے چشم عبرت ہو، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، اور عبرت جو ہے وہ کسی چیز کو ایسے دیکھنا کہ اس سے جو ہے وہ سبق حاصل ہو، اور انسان کی غلطیوں کی اصلاح ہو، اور اس کو جو ہے وہ نیکی کی طرف اس کا دل مائل ہو. تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو عبرت کے ساتھ دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے غفلت کے ساتھ دیکھنا، یعنی آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن غافل ہیں، آپ کا دل غافل ہے، آپ کی عقل جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی، اگرچہ کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں چیز کو، لیکن آپ کوئی میسیجز اس سے ڈرائیو نہیں کر رہے، کوئی اسباق جو ہے وہ اس سے ڈیڈیوس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کو بے چشم غفلت کہیں گے، بے چشم غفلت، غفلت کی آنکھ سے دیکھنا، اور یہاں پر عبرت کی آنکھ کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھنا تو دونوں میں دیکھنا ہی ہے نا، وہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ یہ والا کام عبرت کے ساتھ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ یہ والا کام غفلت کے ساتھ کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ غفلت کی بجائے، یعنی غفلت کی بھی ایک ایکسٹریم فارم کہ گناہ کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کسی چیز کو دیکھ جو ہے وہ نفس کی خواہش کی خاطر بھی تو سکتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی تو کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں نا. تو وہ تو غفلت یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غفلت نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہے. نہیں، گناہ تو ہوتا ہی غفلت ہے، اور غفلت تو ہوتی ہی گناہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، بس اس میں ایکسٹریمیٹیز ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کسی چیز کو اور کوئی بس اس کو سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی بات، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا کسی چیز کی طرف، ہے نا، بس ایسے ہی ادھر ادھر جو ہے وہ آنکھیں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور نعوذ باللہ यानी गंदी चीज देख रहा है और यानी हराम चीज की तरफ नजर कर रहा है, और दिल के अंदर जो है ना वो यानी उसकी शहवत जो है वो भर रही है उस चीज को देख करके, और गंदे गंदे ख्यालात जो है वो अपने दिमाग के अंदर वो बांध रहा है। ख्यालात तो आते हैं, लेकिन बांधना, ख्याल को बांध लेना और यानी ख्याल के ऊपर सोचना शुरू कर देना, ठीक है ना, ये जो है वो गुनाह का मामला बन जाता है। तो देखने की बड़ी शक्लें हो सकती हैं, एक इबरत के साथ देखना, एक गफलत की कम दर्जे के साथ देखना, और एक गफलत के आला दर्जे के साथ देखना, ठीक है। तो हमने आपको तीन चीजें एक्सप्लेन करी हैं, अगर किसी को समझ में ना आई हो तो बिना तकल्लुफ पूछ लें। तो फरमाया कि जमीन की सैर सियाहत जबकि बचश्मे इबरत हो उसकी तरफ तरगीब है, यानी बाकायदा रागब किया जा रहा है, उस तरफ मायल किया जा रहा है कि ऐसा तुम करो। और फतकून अलहुम कुलूबुन, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि बस यानी उनके लिए होते कुलूब या अकलूना बिहा, ठीक है ना, है तो उनके अंदर कुलूब, हर इंसान के अंदर रूह है, जो भी जिंदा है उसके अंदर रूह है, और रूह का कल बताया था ना कि कल्ब जो है वो उसका सेंट्रल पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोकेशन होती है रूह की उसको कल्ब कहते हैं। तो कल्ब है तो, लेकिन अगर ये कल्ब को इस्तेमाल भी करता, ठीक है ना, तो याकिलून बिहा, उसके जरिए से ये अकल हासिल करता, ये सोचता, फिक्र करता, गौर करता, और इसको बात समझ में आती, औ आजानो यस्मऊना बेहा बेहा, या इनको जो है वो इनके लिए कान होते, ठीक है, जिनसे ये अटेंशन के साथ जो है वो बात को सुनते, फोकस के साथ बात को सुनते, ठीक है। फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, बस बेशक आंखें अंधी नहीं होती, यानी आंखों से तो देख ही रहा है लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो फरमाया कि इस तरफ इशारा है कि जमाना माजी और गुज़श्ता अक़वाम आलम के हालात व कैफियात का मुशाहिदा इंसान को अक़ल व बसीरत अता करने वाला है, बशर्ते कि इन हालात को बाज़ तारीखी सवानेह की हैसियत से नहीं बल्कि इबरत की नज़र से देखे, तो हर वाकया एक बसीरत का सबक देगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर जा बजा जो वाकयात बयान किए हैं तो वो तारीखी सवानेह के तौर पर बयान नहीं किए, कभी बायोग्राफीज लिखी हुई है ना, लोगों की बायोग्राफीज लिखी हुई हैं, या जो है वो कोई, कुरान इज नॉट अ हिस्ट्री बुक, कुरान इज नॉट अ स्टोरी बुक, ठीक है, कि वो जो है आपने स्टोरियां पढ़नी अपना टाइम पास करने के लिए या बच्चों को सुलाने के लिए, बेड टाइम स्टोरीज जिनको कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुना दीजिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुना दीजिए और राइट, नहीं, ये स्टोरी बुक नहीं है, बल्कि हर हर स्टोरी जो उसके अंदर मौजूद है वो इबरत के लिए है। उसी तरीके से कुरान नाजिल होना जब खत्म हो चुका तो उसके बाद क्या दुनिया में स्टोरीज खत्म हो गई, दुनिया के अंदर वाकयात रूनुमा होने बंद हो गए? नहीं, कुरान मजीद तो 1400 साल पहले उसकी नुजूल मुकम्मल हो गया, राइट, उसके बाद भी तो वाकयात हो रहे हैं ना। तो जिसके पास इबरत की निगाह होती है और जिसका दिल जिंदा होता है, जिसकी आंखें, दिल की आंखें खुली हुई होती हैं, वो 1400 साल से पहले के वाकयात को भी इबरत की निगाह से देख रहा था और 1400 साल के बाद, पहले के बाद के वाकयात उनको भी इबरत की निगाह से देखता है, हत्ता के अपने हाल के जमाने में जो वाकयात हो रहे हैं उनको भी इबरत की निगाह से देखता है, ठीक है। और यही इंसान के लिए मकसूद भी है और यही इंसान के लिए फायदा मंद भी है, ठीक है, वरना उसका हर देखना उसके लिए नुकसानदेह है। या तो वो गुनाह की नीयत से देख रहा है चीजों को, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है उसके अंदर, या वो गफलत की नीयत से देख, गफलत के साथ देख रहा है, गफलत के अंदर तो नीयत ही कोई नहीं होती, बगैर नीयत की इंसान जो है वो बस है ना सर आंखें घुमा रहा है, तो गफलत के साथ देख रहा है तो भी उसका नुकसान है, क्यों, क्योंकि फायदा नहीं उठा रहा, फायदा नहीं पा रहा, वक्त उसका जाया हो रहा है, राइट, जो गफलत के साथ चीजों को देख रहा है, तो भाई उम्र तो कट रही है ना, ये कोई थोड़ी कि गफलत के साथ देखूंगा तो उस वक्त जो है वो आपकी उम्र गुजरनी बंद हो जाएगी, टाइमर जो है वो क्लिक होना बंद हो जाएगा उस वक्त, नहीं, टाइमर तो क्लिक हो रहा है, और ये टाइमर जो है वो एक महदूद टाइमर लेकर के हम आए हुए हैं और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो एक एक लम्हे को जो है वो इबरत के साथ इस्तेमाल करना ये फायदेमंद बात है ना। तो हर वाकया एक बसीरत का सबक देगा। ठीक है, ये जो दिल का जिंदा होता है ना, ये तौबा के बाद, और फिर तौबा के बाद जो नेकी के रास्ते पे नेक लोगों की सोहबत में जब इंसान दीन का इल्म हासिल करने की नीयत से उठना बैठना शुरू हो जाता है ना, तब उसको उसका दिल जो है ना वो जिंदा होना शुरू होता है, उससे पहले उसका दिल मुर्दा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जिसको कहते हैं कि तहदीस नेमत, ठीक है, तहदीस नेमत का बाकायदा हुक्म है, फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अपने रब की नेमतों को जो तुम बयान करो, ठीक है, तो इस हुक्म से जो कि नबी अलैहिस्सलाम को दिया गया, इससे उमूमियत मिलती है कि सारी उम्मत के लिए भी यही हुक्म है कि जो तुम्हारे ऊपर नेमतें हैं ना अल्लाह ताला की, तो उन नेमतों को तुम बयान करो, अगर उसके बयान करने में तुम्हारा कोई नुकसान ना हो रहा हो। कभी ऐसा भी होता है कि नेमत को बयान करने की वजह से नुकसान इंसान को हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है वो बहुत बड़ा जो है ना बिजनेस, आपके पास आपने डील जीत ली, ठीक है ना, अब उस बिजनेस डील को जो है वो जा करके आप ऐसे लोगों के दरमियान बयान करना शुरू कर देंगे जो कि आपके खैरख्वाह नहीं है, राइट, जिनको के पॉसिबली आपके साथ हसद है, तो अब जब उनके सामने आपने नेमत को बयान किया कि मुझे जी 1 करोड़ रुपए का जो है ना वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो अब जो है ना वो हासिदीन हसद के अंदर लग जाएंगे और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, तो नेमत का वहां पर बयान करना फायदेमंद नहीं था, ठीक है, लेकिन कहीं पर नेमत का बयान करना भी फायदेमंद होता है, खुसूसन जो इल्म की एक मजलिस होती है ना, वहां पर उस्ताद कभी कभी अपनी नेमत को तालिबे इल्मों के सामने बयान करता है, इससे तालिबे इल्मों को इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है, और तालिबे इल्मों के दिल में उस्ताद की इज्जत पैदा होती है ना, तो इससे फिर उस्ताद की बात को सुनना उनके लिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है, अब वो ज्यादा गौर से बात सुनते हैं और ज्यादा अमल की नीयत से बात सुनते हैं, ठीक है, तो इस वजह से तहदीस नेमत का एक हुक्म अंडर दीज कंडीशंस, तहदीस नेमत का भी हुक्म है ईमान वालों को, ठीक है, तो इस वजह से ये आज सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर, चूंकि मकसद है इसके अंदर एक फायदे का कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, ठीक है ना, और वो जमाना भी क्या था जिसमें कि हमने शऊर की आंखें खोली, वो जमाना जो था वो पाकिस्तान के अंदर एक सॉर्ट ऑफ इस्लामी हुकूमत का जमाना था, जियाउल हक का, ठीक है ना, जब हम यानी पैदाइश तो 74 की है, लेकिन जियाउल हक जो है वो 79 के अंदर जो मुल्क के सदर बन चुके थे, तो उसके बाद जो मुल्क में ना एक बड़ा यानी उनकी तरफ से जो है वो बड़ी कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से ना दीन का माहौल आ जाए, और जो बहुत ही गंदा माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ था उससे पहले, यानी शराब आम थी, शराब जो है ना वो PIA की फ्लाइट्स के अंदर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट के अंदर शराब मिलती थी, सिर्फ फर्स्ट क्लास को नहीं सबको मिलती थी, जैसे आज आप देखते हैं ना कि KLM के अंदर शराब मिलती है, ब्रिटिश एयरवेज के अंदर शराब मिलती है, उसी तरह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान नाम भी इस्लामी जमहूरिया था उसका, वो 1974 के आईन के अंदर पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया बन चुका था, राइट, और जो है वो आपकी जो करारदाद मकासद थी 1948 की, उसके अंदर ये चीज आ चुकी थी कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं बनेगा जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ हो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स बिन ऑलरेडी रिटन लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है, लेकिन PIA के अंदर शराब मिल रही होती थी, ठीक है ना, और शराब के खाने जो 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 दुकानें हैं वो सड़कों के ऊपर आम खुली होती थी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, और जो आपका टेलीविजन था पाकिस्तान का टेलीविजन जो था उसके ऊपर नाच गाना, आज तो फिर से शुरू हो गया ना सब कुछ, लेकिन उससे पहले भी था, 1979 से पहले भी था नाच गाना, औरतें आकर के जो इंडियन हिंदू वाले नाच होते हैं ना वो सारे के सारे PI पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर आ रहे होते थे, ठीक है, तो जियाउल हक के जमाने में इन चीजों को एक एक करके उन्होंने बंद किया और बहुत कुछ तब्दील हो गया था, बहुत कुछ तब्दील हो गया था, ठीक है ना, अगरचे के जैसी तब्दीली आनी चाहिए थी वैसी नहीं आ सकी, क्यों, उसकी वजह यह थी कि इतना ज्यादा अपोजिशन उनको मिलती थी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, पॉलिटिशियंस जो दूसरे होते थे उनकी तरफ से, और आवाम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से इतनी ओपोजिशन मिलती थी कि कोई काम नहीं कर पा रहे होते थे, حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے علماء کرام کو, کیونکہ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا علماء کرام سے, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جو اولادیں تھیں اور دیگر جو بڑے بڑے اکابر علماء کرام تھے, بڑا گہرا تعلق تھا ضیاء الحق شہید کا ان سب کے ساتھ. تو انہوں نے نا پھر علماء کرام کو مستقل رابطے میں رہتے ہی تھے, بلاتے رہتے تھے اپنے پاس, ان کے پاس جاتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ پھر انہوں نے مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ابھی انتقال ہوا ہے, مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی, تو ان کو اور مولانا یوسف بنوری غالباً یا کسی دوسرے بڑے عالم کو اور ان علماء کو ملا کر کے نا ایک کمیشن بٹھایا کہ بھائی آپ ذرا تحقیق کریں, آپ ذرا تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ مجھے اتنی اپوزیشن کیوں ملتی ہے جب میں کوئی شرعی حکم جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں, رائٹ, جوائنٹ چیف آف یعنی اسٹاف کمیٹی ہیں, جو یعنی نیوی, ایئر فورس, آرمی تینوں کا جو مشترکہ لیڈر ہوتا ہے نا وہ تھے ضیاء الحق. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ میں جب کوشش کرتا ہوں کوئی شرعی حکم لانے کی اتنی اپوزیشن مجھے کیوں ملتی ہے, ہر شعبے سے اپوزیشن مل رہی ہوتی ہے. تو ان علماء کی جو کمیٹی بیٹھی نا, انہوں نے ایک سال تک تحقیق کری, مختلف جگہوں پہ جا کر کے بات کرنا, وہاں سے پوچھنا, یہاں سے پوچھنا, جو طریقہ ہوتا ہے ایک باقاعدہ کمیشن کا تحقیق کرنے کا. اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ پیش کری ہے, اپنی رپورٹ پیش کری ہے حکومت کو کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے. ایک منٹ, یہ دوسرا لنک جو ہے وہ بند ہو گیا, تو دوبارہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. جی, تو جب رپورٹ پیش کری نا, تو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بعد میں انڈیا کے ایک سفر کے اندر یہ بات بتائی کہ ہم نے اس رپورٹ کے اندر لکھا کہ اس کی وجہ جو ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا, ٹھیک ہے, کب کی بات ہو رہی ہے, 1980s کی بات ہو رہی ہے, 2023 کی بات نہیں ہو رہی, 1980s کے اندر کی بات ہو رہی ہے, کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے نا وہ سارے لوگوں کو دین کے خلاف کر دیتا ہے, دین کے خلاف, شریع احکامات کے خلاف. باقی سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ والا دین جو ہے نا وہ نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین والا دین نہیں ہے نا, اتنا باتیں کرنا اور ساتھ ساتھ جو مجرے ڈانس پارٹیاں اور مجرے اور یہ شریع احکامات کی خلاف ورزی, بے پردگی, موسیقی, یہ والا دین نہیں. جو قرآن اور سنت والا دین ہے, یہ تعلیمی نظام قرآن اور سنت والے دین کے خلاف کر دیتا ہے انسان کو. اس وجہ سے جو ہے نا, آپ جو ملک کے اندر جو اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اتنی زیادہ ریزسٹنس مل رہی ہے اس کے اوپر. ذرا سوچیں, کاش کہ ہم سوچیں, لہم قلوب یعقلون بہا, کہ کاش کہ ہم بھی اپنے قلوب کو استعمال کر کے ان باتوں کے اوپر فکر کریں, سوچیں, ان باتوں کو سنیں. آذان یسمعون بہا, ہمارے پاس بھی تو کان ہے نا, کیا دل کے کانوں کو ہم نہیں کھول سکتے اور اپنی عقل کو جو ہے وہ ان چیزوں کو سوچنے کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کریں گے, کر سکتے ہیں اور کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو غافلون کے اندر ہمارا شمار ہو جائے گا, جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی قرآن مجید کے اندر, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, اور تحقیق کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہے, لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ, ان کے لیے مقدر کر دیے جہنم, کثیرم من الجن والانس, انسانوں اور جنوں کی کثیر تعداد کے لیے ہم نے جہنم کو مقدر کر دیا ہے. کیا مطلب, یہ کیوں مقدر کر دیا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں, لہم قلوب, ان کے پاس قلوب تھے, لا یفقہون بہا, ان قلوب کو استعمال کر کے وہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کے پاس آنکھیں تھیں, ہم نے ان کو آنکھیں دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا, لیکن لا یبصرون بہا, وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے, ولہم آذان, اور ان کے پاس کان تھے, لا یسمعون بہا, وہ ان کانوں سے سنتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو مویشیوں کی طرح کے تھے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر. مویشی کا کیا کام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے نا ڈائریکٹلی نہیں فرمایا کہ یہ تو مویشیوں سے بدتر ہے, نہیں فرمایا, اولئک کالانعام, وہ تو مویشیوں جیسے ہیں, کیونکہ مویشی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف چارہ چگنے سے اس کو کنسرن ہوتا ہے, उसको सिर्फ जो है ना वो अपनी शहवत पूरी करनी है, ठीक है ना, मवेशी की शहवत जो है वो मशहूर है, ठीक है, शहवत पूरी करनी है उसने, और उसने जो है वो अपनी पेट की शहवत पूरी करनी है, जिंसी आजा की शहवत पूरी करनी है और पेट की शहवत पूरी करनी है, दिस इज ऑल, जो कि मवेशी का अनाम का की जिंदगी का मकसद यही होता है, ठीक है। फिर से बंद हो गया, क्या करें, एक मिनट दूसरा कोई हल निकालते हैं इसका, एक मिनट रह गया। पेपर कनेक्ट किया है मेंस वाले लिंक को,
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस,
एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो अल्लाह ताला मवेशियों से मुशाबहत देते हैं ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगी में ना सिर्फ खाना पीना चुगना और बस अपने जो है ना वो शहवात पूरी करना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि नहीं बल्कि ये लोग मवेशियों से भी बदतर हैं, मवेशियों से भी बदतर हैं। क्यों? इसलिए कि मवेशी को अल्लाह ताला ने मवेशी के पास रसूल नहीं भेजे थे, राइट, मवेशी के पास रसूल नहीं आया था। रसूल वाली जो नेमत है ना ये सिर्फ इंसानों और जिन्नों को अता की गई है, सिर्फ इंसानों और जिन्नों को, और मवेशी जो है वो अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल नहीं होते, ठीक है, वो अपनी शहवत पूरी करते हैं, ठीक है, उनकी जिंदगी का मकसद जो है वो चरना होता है और फिर उसके बाद जाहिर है उसके बाद फिर उनको कटना होता है, कट करके जो है वो दूसरों की गजा बननी होती है, खुराक बननी होती है, ठीक है। लेकिन इंसानों के पास तो अल्लाह के रसूल आए थे और इंसानों के पास तो जन्नत का ऑप्शन दिया गया था, मवेशियों को थोड़ी जन्नत का ऑप्शन दिया गया था, तो अगर वो अपनी जिंदगी शहवत के अंदर गुजार देते हैं तो व्हाट इज द बिग डील, उनको तो जन्नत में जाना भी नहीं है, उनको तो जहन्नम में जाना भी नहीं है। और ये इंसान जिसको जन्नत जहन्नम के बारे में पता है और जिसको नबियों की नेमत दी गई है, ये अल्लाह ताला से गाफिल है, जबकि मवेशी अल्लाह ताला का जिक्र भी करते रहते हैं, राइट, तो ये तो मवेशियों से भी बदतर हैं। और फिर आखिर में फरमाते हैं उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल लोग हैं, ये गाफिल लोग हैं जो कि मवेशियों से भी बदतर होते हैं। तो क्या हम आजकल जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते तो हैं, राइट, और समझते तो हैं, लेकिन क्या सारी की सारी सिफात हमारे अंदर गाफिलों वाली नहीं है, गफलत वालों की नहीं है, कि जी हमने भी चुगना और अपनी शहवत पूरी करना और अपनी ख्वाहिश पूरी करना इसी को मकसद जिंदगी की बनाया हुआ है और किसी और चीज के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, नहीं? तो बात कहां से शुरू हुई थी, तहदीस नेमत से। तो इस वजह से हमने आंख जो खोली तो वो बड़ा यानी मस्जिदों के अंदर बड़ा वाज हो रहा होता था और हत्ता के टीवी के ऊपर भी बहुत सारे दीनी प्रोग्राम्स हो रहे होते थे, सब कुछ ठीक है ना, लेकिन सुनते थे कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और अल्लाह वालों से जुड़े और उनकी बातों को जरा गौर से सुना और उनकी बातों को माना और अपने गुनाहों से तौबा करी, छोड़ा अपनी जो गंदी आदतें बुरी आदतें जो बनाई हुई थी, जो मेजर बड़ी बड़ी थी, छोटी छोटी को तो छोड़ने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो मेजर किस्म के जो ब्लंडर्स कर रहा होता है इंसान, जब अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता है तो वो इमीडिएटली छोड़ना होती है, मौसीकी को छोड़ना, उल्टी सीधी जो है वो वेस्टर्न कल्चर की चीजों को छोड़ना। तो उसके बाद जो है ना जब जा करके उन्हीं जुम्मे के खुतबों को जो कि हम बचपन से सुन रहे थे, उन्हीं मौलाना साहब के खुतबे जो बचपन से सुन रहे थे, उन्हीं के खुतबे के अंदर बैठे, इतना कुछ समझ में आना शुरू हुआ, इतना कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि खुद हैरान रह गए कि यार पहले इन्हीं की बातें सुन रहे होते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता था, राइट, क्या फर्क आ गया था, ठीक है ना। इसका क्रेडिट हम अपने मशायख को देते हैं, हम अपने उलमा, हमारा अपना कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने दुआएं करी, उन्होंने तवज्जोहात डाली, उन्होंने मेहनत करी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन मकसद बयान करने का कि भाई अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमें अपने दिल को जिंदा करने की मेहनत करने की जरूरत है, जो कि तौबा और नेक सोहबत के अंदर आना है, ठीक है। तो फरमाया कि इबरत की नजर से देखे तो हर वाकया एक बसीरत का सबक देगा, ठीक है। इब्न अबी हातिम ने किताब तफक्कुर में हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हक तआला ने हजरत मूसा अलैह सलाम को हुक्म दिया कि लोहे के जूते बनाओ और लोहे की असा हाथ में लो और अल्लाह की जमीन में इतने फिरो कि ये आहनी जूते घिस जाएं और आहनी असा टूट जाए, ठीक है, क्योंकि असा टेक टेक करके विद एवरी स्टेप आपको असा को भी जमीन के ऊपर टेकना होता है, जो जितने आपके जूते इस्तेमाल होंगे उतना ही आपका असा भी इस्तेमाल होगा, तो जैसे जूते घिसेंगे वैसे ही असा भी जो है ना वो टूट जाएगा। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसको रूहुल मानी तफसीर से नकल करके फरमाते हैं कि अगर ये रिवायत सही है, क्योंकि ये रिवायत हदीस मुबारक में नहीं मिलती, ये यकीनन कोई बनी इसराइल की रिवायात में से यहाँ पे नकल किया है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी खिलाफ शरीयत बात नहीं थी, इस पर असल को नकल कर देते हैं हमारे उलमा, इसराइली रिवायात में से ऐसी रिवायात को नकल कर देते हैं। तो फरमाया कि अगर ये रिवायत सही है कि वाकई अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा कहा था, तो इस सैर व सियाहत का मकसद वही इबरत व बसीरत हासिल करना है, ठीक है। हदीस मुबारक का अगरचे जिसको मौका नहीं मिला उसको ढूंढने का, आप में से किसी को याद हो तो आप नकल भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक हदीस मुबारक का क्या क्या मफहूम है कि मेरी उम्मत की सियाहत जो है वो यही है, ये जो तीन, ये हज उमरा और ये यानी सिर्फ तीन हरमैन तक, ठीक है, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुकद्दस, ठीक है। तो अब क्या दूसरी किसी जगह आप नहीं जा सकते? नहीं, इबरत की निगाह से हर जगह जा सकते हैं, इबरत की निगाह से। और जहां तक ये बात आती है कि भाई फैमिली को लेकर के जो है ना वो जरा आउटिंग करने के लिए और फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए आप जो है वो कहीं पे चले जाएं, तो ना तो वो हरमैन के अंदर वो जगह शामिल है, ठीक है ना। और ये तो जी हम फैमिली आउटिंग की वजह से हम मरी जा रहे हैं, यूबिया जा रहे हैं, या इंडिया के अंदर जो है वो जो भी जगह है आपकी, कौन सी है वो कश्मीर वगैरह जो भी आपके पास है वहां पे लेके बैठे हुए, तो ठीक है भाई वहां जाए घूमने के लिए, ठीक है। तो वो क्या जायज नहीं होगा है? फैमिली के साथ जो आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे आपको बस यानी साइट सीइंग करनी है, तो क्या ये जायज नहीं होगा? ओ भाई, अगर मुसलमान बन करके जाएंगे तो क्यों नहीं जायज होगा? हम तो गैर मुस्लिम हालत के अंदर जाना चाहते हैं ना जगहों पर, नहीं, गैर मुस्लिम हालत में तो आपको इजाजत ही नहीं है जिंदा रहने की, गैर मुस्लिम हालत में गफलत में तो जिंदगी गुजारने की इजाजत ही नहीं है भाई। इबरत की निगाह अपने घर के अंदर भी इबरत की निगाह, अपने शहर के अंदर भी इबरत की निगाह, अपने मुल्क के अंदर भी, दफ्तर के अंदर भी, दुकान के अंदर भी, कारोबार के अंदर भी इबरत की निगाह। तो भाई जब फैमिली के साथ आप जो चिल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, जैसे मलेशिया जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं, तो आपको क्या वहां पे इजाजत मिल जाती है कि फैमिली के साथ जो है ना जब तफरी के लिए जाए तो उस वक्त अपनी इबरत की निगाह को स्विच ऑफ कर दें और अपनी गफलत की निगाह को जो है वो टर्न ऑन कर दें? क्या ख्याल है, ये इजाजत मिल जाती है कोई फैमिली आउटिंग के वक्त में? नहीं, हर किस इजाजत नहीं मिलती, हर किस इजाजत नहीं मिलती कि जब आप अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो आउटिंग कर रहे हैं तो अब आप गफलत की निगाह को स्विच ऑन करें और इबरत की निगाह को स्विच ऑफ कर दें, हर किस नहीं। फैमिली आउटिंग भी इबरत की निगाह के साथ, हाँ फैमिली के साथ वक्त गुजारना ताकि फैमिली के साथ एक अच्छा माहौल बने, उनको भी जो है वो मौका मिले देखने दाखने का चीजों को और एक यानी इससे जो है वो फायदे हो। अगर कोई मजबूरी रास्ते में नहीं आ रही है, आड़े में नहीं आ रही है, तो भाई करें इस तरह। मजबूरी क्या हो सकती है, पैसे नहीं है, ठीक है ना, ये मजबूरी नहीं है कि पैसे तो थे और उसको गोल्ड खरीदने के अंदर लगा दिया सारा का सारा, या पैसे तो थे और उससे जो है वो सारा का सारा प्लॉट खरीद लिया, ठीक है ना, मतलब एक प्लॉट था और एक गुड अमाउंट ऑफ सेविंग थी, लेकिन जितना पैसा आ रहा है मजीद प्लॉट खरीद रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है मजीद गोल्ड खरीद रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके पास एक ठीक है, अपने बड़ों के साथ मशवरे के साथ तय करें कि भी मुझे कितने प्लॉट की जरूरत है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने घर वालों के ऊपर खर्च करें, अपने रहने के मुकाम को अच्छा बनाएं, ठीक है ना, और जो है वो घूमने फिरने के लिए भी इस्तेमाल करें। गफलत की तो इजाजत ही नहीं है, किसी सूरत गफलत की इजाजत नहीं है, ठीक है, घूमने फिरने में इस्तेमाल करें। तो एक मजबूरी क्या हो सकती है कि नहीं वाकई पैसा नहीं है, या कोई दूसरी मजबूरी हो सकती है कि जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी पड़ी हुई है, कोई ऐसी जो सिचुएशन पड़ी हुई है कि बस अल्लाह ताला ने मामला ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, अब आप नहीं जा सकते, कोई मतलब माजूरी हो सकती है, या आपके साथ कोई माजूर हो सकता है, ऐसा इंसान आपके बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं जो माजूरी की कैफियत में है, उनकी वजह से जो है वो आप नहीं जा पा रहे हैं, वो मजबूरी होती है ना, लेकिन सिर्फ जो है ये कि नहीं बस मैंने तो पैसे जो है ना वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर या तो जमा करते रहना है या गोल्ड खरीदते रहना है, ठीक है ना, और मैंने जो है ना वो वही एक दड़बे जैसे घर के अंदर ही बंद हो करके रहना है, ठीक है, और मैंने यानी नहीं भाई, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? अपने घर वालों के ऊपर खर्च करना, सबसे बेहतरीन सदका अपने घर वालों के ऊपर खर्च करना है, ठीक है। तो इस मामले में ना कुछ बहुत ज्यादा कंजूस हैं, बहुत ज्यादा कंजूसी का मामला करते हैं, मजबूरी के बगैर कंजूसी का मामला करते हैं, मतलब मजबूरी में तो कंजूसी कहलाती नहीं है, लेकिन ठीक है। ये क्या आपने सवाल कर दिया, फैमिली के साथ सफर में इबरत की निगाह की मिसाल, इबरत की निगाह की कोई मिसाल होती है? भाई फैमिली के साथ जब आप सफर करते हैं तो आप मतलब, ये आपने गलत सवाल कर लिया, आपको सख्त से मुझे डांट पड़ने वाली है इस वक्त, ठीक है ना, मतलब सवाल करें बेशक करें, लेकिन हुस्नुल सवाल है, ठीक है ना, हुस्नुल सवाल, सोच करके सवाल करें, पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाऊं, वरना बहुत सख्त किस्म की पड़ सकती है आपको इस वक्त। चले तो आगे चलते हैं कि आखिरत का दिन 1,000 साल होने का मतलब, ठीक है, आयत मस्कुरा में जो ये फरमाया है, इन यौमन इंद रब्बिका का अल्फ सनातिन, ठीक है, कि बेशक एक दिन तेरे रब के पास 1,000 सालों जैसा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त तहकीक लिखी है हजरत ने, और यही एक मामला है जिसके बाद फिर आगे की आयात शुरू हो जाएंगी। तो फरमाते हैं कि यानी आपके रब के पास एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर होगा। इसमें दो एहतमाल हैं, एक ये कि उस दिन से मुराद कयामत का दिन लिया जाए, और उसका 1,000 साल के बराबर होने का मतलब यह है कि उस दिन के हौलनाक वाकयात और हैबतनाक हालात की वजह से ये दिन इतना दराज महसूस होगा जैसे 1,000 साल। खुलासे तफसीर मजकूर में इसी को इश्तेदाद के लफ्ज से ताबीर किया गया है, ठीक है ना, यानी होता है ना कि भाई व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना, जो जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो वो जो है ना थोड़े दिनों के लिए जब अपने मैके जाते हैं या अपने जो है वो रिश्तेदारों के दरमियान उनको मिलता है तो वो 1 महीने की छुट्टी लेके जाते हैं, और वो 1 महीना जो है ना वो बड़ी तेजी से गुजर जाता है, कहते हैं पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया, है ना भाई, 1 महीना तो 1 महीने में ही गुजरा है, वो कोई एक दिन में तो नहीं गुजर गया, आपको फील ऐसा हुआ कि वो एक दिन में गुजर गया ना। और उसी तरीके से किसी मुसीबत की जगह पे जैसे स्कूल बच्चे जो हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, अल्लाह करे सारे बच्चों का ऐसे ही हो जाए कि स्कूल जाना अच्छा ना लगे, वरना सारे बच्चे जो है ना वही दीन के खिलाफ, जैसे कि पाकिस्तान में जियाउल हक शहीद को जो है वो जो मिला ना, वो किस वजह से मिला, स्कूल सिस्टम की वजह से मिला ना ये अपोजिशन, ठीक है ना, कि सारे जो है वो दीन के खिलाफ। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस वाले स्कूल सिस्टम के सारे खिलाफ हो जाए, ठीक है ना, वरना एक एक जोक बना हुआ है हमारे यहाँ कि जी बच्चे जो है वो स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, भाई आप जो जरा साइकोलॉजिस्ट लोगों की बात सुने तो वो तो आपके सामने प्रूफ करके रख देंगे कि बच्चों को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता, है ना, क्योंकि स्कूल जो है वो है ही इतनी हैबतनाक किस्म की जगह और इतनी बुरी जगह है कि बच्चों को तो आप वहां पे जुल्म कर रहे होते हैं स्कूल भेज करके, इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने मौलवी साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं गोरों की और अमरीकियों की बात कर रहा हूँ, वहां पे जिन्होंने इन चीजों के ऊपर रिसर्च करी है वो बताते हैं कि भाई ये स्कूल किस किस्म की हॉरिबल किस्म की चीज होती है, ठीक है। तो बहरहाल तो क्या था कि हाँ, जो बच्चे जो है वो जिनको हंसी मजाक में जो बोलते हैं ना स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो बच्चे से पूछें कि भाई स्कूल के अंदर तुम्हारे 5 घंटे कैसे गुजरते हैं, वो ये बात बताएगा कि भाई ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं हो गए तेरे, है ना, बड़ा मुश्किल होता है वहां पे वक्त गुजारना, जाना भी अच्छा लगता है वापस आना भी अच्छा लगता है, लेकिन दरमियान में जो वक्त होता है ना स्कूल के अंदर वो बड़ा मुश्किल होता है, एक बड़ा लतीफा भी मशहूर है ये, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने, हमारे यहाँ मदरसा प्लस स्कूल है, दोनों तालीम एक जगह ही दी जाती है, वहां भेज सकते हैं बच्चों को यार ये एक लंबी बहस हो जाएगी, मदरसा दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक जगह दी जाती है भाई, अभी आपके पास जब तक कोई समझ की थोड़ी सी नहीं आए ना, जरा जरा वसी समझ इस मामले के अंदर, तो अभी ये फतवे मत ले मुझसे, मैं वैसे भी मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है ना, तो ये फतवा ओरिएंटेड जो सवाल होता है ना, ये भेज सकते हैं वहां भेज सकते हैं, नहीं भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास तो पूरी की पूरी एक एक जहनी यानी डिवेलपमेंट की बात होती है ना, सोच की बात होती है, एक पूरा एक यानी एक, एक एक सोच की तब्दीली, और उसके लिए आपको जो है वो तहकीक की और जरा वक्त लगाने की जरूरत पड़ती है, ये वन एंड जीरो में जवाब नहीं मिलते हमारे यहाँ, ठीक है ना। ये मुफ्ती साहब के जवाब अगर कोई होंगे तो वो हम आपको बता सकते हैं कि मुफ्ती साहब ने ये फरमाया, ठीक है, लेकिन ये आजिज हमारा काम मुफ्ती वाला नहीं है, जायज और नाजायज और यस और नो वाला जवाब नहीं है, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब जो है ना वो ये है कि आप जरा सोचना शुरू करें और देखना शुरू करें कि आपका बच्चा वहां पे जाके क्या कर रहा है, क्या तालीम हासिल कर रहा है और कौन उसको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं, ठीक है ना, और करिकुलम कैसा है। अगर टीचर्स भी जो है वो ईमान वाले हैं और करिकुलम जो है उसके अंदर जो दुनियावी साइड ऑफ द करिकुलम है तो उसके अंदर जो है वो लहवो लव और काफिराना अकायद और काफिराना तर्ज जिंदगी, ठीक है ना, वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा तो फिर जो है वो इट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल मतलब इट्स नॉट द बेस्ट थिंग बट इट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद ही, तो इस वजह से देयर इज नो फतवा ओरिएंटेड आंसर फ्रॉम मी, ठीक है। आगे चलें कि भाई हम तो जो बातें बीच में डाल देते हैं ना वो होता है कि आप जरा सोचना शुरू करें इसके ऊपर, इस वजह से आज इस बीच बीच में जो है ना वो इस किस्म की चीजें इंसर्ट करते रहते हैं, वरना स्कूल का क्या ताल्लुक इस वाले आयत की तफसीर के अंदर, ठीक है ना। तो क्यों बीच में स्कूल की बात ले आए, ताकि आप सोचना शुरू करें, ठीक है ना। फतवे देने के लिए हम आपसे ये बातें नहीं करते, चलें आगे चलें कि इसमें दो एहतमाल है, यानी पहला एहतमाल किया कि ये जो इंदा रब्बिका यौमन की बात हो रही है ना तो ये कयामत के दिन है, और कयामत के दिन ये यानी हदीसों और कुरान मजीद से ये बात साबित है कि इंतहाई मुश्किल तरीन दिन होगा वो, ठीक है। तो इश्तेदाद शिद्दत की वजह से वो बड़ा महसूस होगा, बहुत से हजार मुफस्सरीन ने इसके यही मानी करार दिए हैं, ठीक है। दूसरे ये कि वाकई में आलम आखरत का एक दिन वाकई में, यानी वाकई में जिसको हम उर्दू में वाकई कहते हैं ना, ठीक है, यानी बकायदा फिजिकली, जैसे कि हमारा दिन जो है वो फिजिकली 24 आवर्स का होता है ना, तो क्या मतलब कि बकायदा दुनिया घूमती है और दुनिया रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, तो इस वजह से जो है ना वो इतना टाइम इलैप्स हो रहा होता है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो वो जो कयामत के दिन होगा वो भी किसी फिनोमिना, किसी फिजिकल फिनोमिना के तहत, वहां पे ये नहीं कि जी उस वक्त भी दुनिया जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही होगी, नहीं, सूरज के बारे में तो हमें बहुत सारे सोर्सेज से पता चलता है वही कुरान मजीद की तफासीर से कि सूरज तो जो है ना वो यानी समंदर में आके गिर जाएगा, ठीक है, और समंदर जो है ना वो उबल पड़ेंगे, ठीक है, जो 30वें पारे में जो जो सूरतें हैं उनके अंदर इसकी तफसीर मिलती है, अभी मेरे ज़हन में वो वाली आयात नहीं आ रही है, वैसे शम्स कुव्वरत वगैरह वाली जो आयात है। तो अब क्या होगा कि वो वाला जो दिन है क़यामत वहां पर कोई ऐसी रोटेशन और रेवोल्यूशन वगैरह तो बज़ाहिर समझ में नहीं आता, हो सकता है हो, अल्लाह बेहतर जानता है भाई, ठीक है। तो लेकिन किसी भी फिनोमेना के तहत वाकई में फरमाया कि आलम आखिरत का एक दिन हमेशा के लिए दुनिया के 1000 साल ही के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, हमेशा के लिए भी उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या मतलब कि जो एक तो आलम आखिरत का पहला स्टेज होगा ना हिसाब किताब वाला, ठीक है, तो वो हिसाब किताब तो फिर एक वक्त आएगा जब खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाना है, उसके बाद जो है वो जिसने जन्नत में जाना था वो जन्नत में चला गया, जिसने जहन्नम में जाना था वो जहन्नम में चला गया, जिसने आराफ के ऊपर जाना था वो आराफ पे चला गया, तो हिसाब किताब तो खत्म हो गया ना, फिर आराफ वाले जो हैं वो अपने अपने हिसाब से, यानी मतलब वो हिसाब किताब वाला मामला नहीं बल्कि कुछ वक्त जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकद्दर कर दिया आराफ के ऊपर, वो वक्त आराफ के ऊपर गुजारेंगे, जन्नत और जहन्नम के दरमियान वाली जगह, ठीक है ना, जिसको आराफ कहते हैं, तो उसके बाद फिर वो भी जन्नत में चले जाएंगे, यानी हिसाब किताब एक लिमिटेड टाइम तक होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जन्नत की जिंदगी और जहन्नुम की जिंदगी, और वहां पर भी 1000 साल के बराबर एक दिन, यानी दुनिया के 1000 साल के बराबर जन्नत का भी एक दिन और जहन्नुम का भी एक दिन, हिसाब किताब का दिन तो 1000 साल होकर के खत्म हो गया, ठीक है। तो बाज रिवायात हदीस से इसी माने की शहादत मिलती है, तो ये दूसरा एहतमाल है, ठीक है। पहला एहतमाल है कि शिद्दत की वजह से वो लंबा लगेगा वरना वो असल में लंबा नहीं होगा, और दूसरा एहतमाल ये है कि वो वाकई लंबा होगा। मुस्नद अहमद ترمیزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فقراء مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فقراء مہاجرین کون سے فقراء مہاجرین؟ ایمان والے, کیونکہ کافروں نے کو تھوڑی ہجرت کری تھی, اور نبی علیہ السلام ایسی باتیں جن لوگوں کو بتایا کرتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہوتے تھے نا, ایمان والے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایمان والے فقراء کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, کیونکہ اب مہاجرین کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ اس لیے استعمال کیا کیونکہ انصار جو ہیں وہ تو آلریڈی اسٹیبلشڈ تھے مدینہ منورہ کے اندر نا, ان کے باغات بھی تھے, ان کے گھر بھی تھے. ہاں ٹھیک ہے, ہر ایک کے پاس بہت بڑا باغ نہیں ہوتا تھا, کچھ کے پاس چھوٹے باغ ہوتے تھے یا کچھ کے جو ہے وہ دوسرے وسائل, آمدنی کے دوسرے وسائل تھے, لیکن انصار سارے کے سارے اسٹیبلشڈ ہی تھے ایک آدھ کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے نا, اب ظاہر ہے ایک شہر کے اندر ایک آدھ تو یعنی ہوتے ہیں نا, لیکن بڑا اچھا پراسپرس قسم کا اس زمانے کا معاملہ تھا, تو غریب غربا نہیں ہوتے تھے الا ماشاء اللہ. لیکن جو مہاجرین آئے وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے درمیان جو ہے نا پھر فقراء کی تعداد بہت زیادہ تھی, بہت کم مہاجرین تھے جنہوں نے سم ہاؤ اپنا کیپٹل بھی ٹرانسفر کچھ نہ کچھ کیا تھا, لیکن باقی تو نہیں کر سکے تھے. تو ان کو فرمایا کہ میں تم کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ کہ تم اغنیا اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے. اغنیا اور مالدار, یہاں پر بھی کون سے اغنیا اور مالداروں کی بات ہو رہی ہے؟ جنت میں جانے والے اغنیا اور مالداروں کی بات ہو رہی ہے. فرعون حمان والے اغنیا اور مالداروں کی بات نہیں ہو رہی, یا ابو جہل اور ولید پلید والے اغنیا اور مالداروں کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ جو جنت میں جانے والے اغنیا اور مالدار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی ایمان والے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ مطلب گناہوں سے بچنے والے ہیں, لیکن تم ان سے بھی پہلے جاؤ گے کیونکہ تم جو ہے نا وہ زیادہ تکلیفیں اور پابندیاں برداشت کر رہے ہو نا. ان کے پاس جو ہے وہ مال اسباب ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق بہت سارے کام کر سکتے ہیں, حلال والے کام, لیکن تم حلال کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پاس اسباب ہی نہیں ہے, تمہارے پاس جو ہے وہ پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے یہ نہیں کہ اٹ ول گو ویسٹڈ, جو تم قربانی دے رہے ہو, جو تم تکلیف برداشت کر رہے ہو, یہ ویسٹ میں نہیں جائے گا, بلکہ قیامت کے دن تمہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا, اس لیے فقراء اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آدھا دن کا مطلب دنیا والا آدھا دن نہیں, وہ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات, ہم نے اتنی تکلیفیں برداشت کری اور صرف جو ہے وہ 12 گھنٹے پہلے ہم چلے جائیں گے جنت میں, تو وہ 12 گھنٹے بعد آ جائیں گے جنت میں. ٹھیک ہے, تو اتنی تکلیف ہم نے 12 گھنٹے کے لیے برداشت کری, نہیں بلکہ 500 سال کے لیے تمہیں فائدہ ملے گا, تمہیں بینیفٹ بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے جواب, انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ از آراف لوکیٹڈ آفٹر کراسنگ پل صراط. ہاں اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اب یاد نہیں سورہ آراف کے اندر بڑی اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی, میرے ساری ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن اسی وقت اگر آپ لوجیکلی ہی خالی اس کو دیکھیں تو آراف پہ جو لوگ ہوں گے نا تو وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. کیا مطلب, جنت والے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے, جبھی تو وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے آراف پر کھڑے ہو کر کے, اور وہ جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ کبھی ادھر جا کے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور پھر یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم جہنم میں نہیں ہیں, پھر ادھر جا کر کے جنت والوں کو دیکھیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ادھر ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے, لوگ جنت اور جہنم میں کب جائیں گے؟ جہنم میں تو وہ چلے جائیں گے جہنم کے گیٹوں سے, پل صراط کے اوپر سے تو ایمان والے جو گناہگار ایمان والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے نا, لیکن کافر تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے بائی پاسنگ دا پل صراط. ٹھیک ہے, ایمان والے جو ہوں گے صرف وہ پل صراط کے اوپر چڑھیں گے, ان میں سے جو متقی ہوں گے وہ تو گزر جائیں گے, اور جو متقی نہیں ہوں گے وہ جہنم کے اوپر والے درجے کے اندر گر جائیں گے. ٹھیک ہے, کافروں کی بات نہیں ہے یہاں پر, جو پل صراط سے کٹ کے نیچے گریں گے نا وہ کافر نہیں ہوں گے, وہ مؤمن ہوں گے, مؤمن ہوں گے جنہوں نے گناہوں کا پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا, پھر اس کے بعد जिन्होंने जन्नत में नहीं जाना तो वो आराफ पे होंगे, क्योंकि ना वो जहन्नुम में जा रहे हैं ना वो जन्नत में जा रहे हैं। तो भाई बीच में एक अल्लाह ताला ने कोई, जैसे आप बहरीन जाते हैं ना, तो बहरीन जाने के लिए कॉजवे के ऊपर एक बीच में एक पॉइंट आता है ना, जहाँ पे कि आप ना बहरीन में ना सऊदी अरब के अंदर बल्कि दरमियान में है, ठीक है ना, ना उधर के ना इधर के, ठीक है। तो लगता है कि आराफ भी कुछ ऐसी ही चीज होगी। बहरहाल तो खुलासे तफसीर में इसी दूसरे मानी को बिलफ्ज़े इम्तिदाद ताबीर किया गया है, ठीक है, यानी इम्तिदाद मतलब फिजिकली इट विल बी स्ट्रेच्ड टू 1000 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी शुभों का जवाब जो आ रहा है वो जरा सा दकीक सा है, तो आपका मैसेज पहले पढ़ लेते हैं कि ऑल्सो इफ समवन स्पेंड्स लाइफ एज वेल्दी पर्सन एंड देन गेट्स पुअर बाय द टाइम ही डाइज will he be counted as poor in akhirat? innamal a'malu bil khawatim, theek hai ke yani jo end hota hai na insaan ka uske upar daromedar hota hai, theek hai, to jab koi insaan pehle to ameer tha lekin baad mein gareeb ho gaya, theek hai, to jab gareeb ho gaya to khatma uska aapne kaha na baad mein ka matlab khatme wala time, theek hai na, to wo ab wo गुरबत के अंदर उसने कैसे अमाल किए, सबर किया कि नहीं किया, ठीक है ना, या जो है वो डे ड्रीमिंग करता रहा, हाँ कितने अच्छे दिन होते थे और मेरे पास भी बेस्ट पैसे होते थे और मैं भी इतना अच्छा था और क्यों करूँ गरीब हो गया और ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता वगैरह वगैरह है, नहीं बल्कि सबर में उसने ये वाला वक्त गुजारा, ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता रहा, तो फिर इसका जो खात्मा है वो तो सबर की हालत में हुआ ना, ठीक है। तो बहरहाल अच्छा, अब जो है ना वो शुभों का जवाब, ठीक है, चले थोड़ी देर गुजर जाती है ना तो जरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से वो जो आपको डांट वाली धमकी दी थी, तो अब जो है ना हम आपको डांटे बगैर जवाब देने की कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ सफर में इबरत की निगाह की मिसाल, भाई निगाह तो निगाह होती है चाहे वो फैमिली के साथ हो चाहे वो घर के अंदर हो, ठीक है, तो जब आप फैमिली के साथ मरी जा रहे हैं तो मरी के अंदर, मरी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो एक मकाम है, ठीक है, हिल स्टेशन पे, ठीक है, या यूबिया या कागान कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पर आपको नजर नहीं आएंगी चीजें, ठीक है, एक तो इबरत की निगाह के भाई पहाड़ हैं और फिर ये हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है वो देखो कैसी कैसी जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक है और क्या शान है ना, ये भी एक इबरत की निगाह हो सकती है कि देखो इन पहाड़ी इलाकों के अंदर तो कोई बैठ करके यानी अल्लाह की नेमतों को जो है ना वो भी नहीं कर रहा होता कि भाई कि देखो कितनी जबरदस्त नेमतें बनाई यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे बेनियाज हैं कि अल्लाह ताला को ये नहीं है कि हर चीज जो बनाई वो इंसानों को दिखाने के लिए बनाई। ये ख्याल इस आरिस को उस वक्त आया था जब बिल्कुल शुरू में नए नए उलमा से जुड़े थे ना, तो हमारे एक उस्ताद साहब थे, हम उस वक्त अमेरिका में रहते थे, तो हमारे एक उस्ताद साहब जो है ना वो गए हवाई, है ना, वही अपने फैमिली को लेकर के हवाई गए थे, वो हवाई एक स्टेट है अमेरिका की जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, तो वो हवाई गए ना, तो वहां पे जा करके उन्होंने बाकायदा वो यानी क्या कहते हैं उसको स्नॉर्कलिंग वगैरह भी करी, ठीक है, तो हमें पर आकर के ना जो मजलिस होती थी तो उसमें बताने लगे कि मैंने वहां पे जो अंडर वाटर मैंने स्नॉर्कलिंग करी देखा, तो वहां पे ऐसी ऐसी मछलियां थी जो कभी तस्वर में नहीं हमने देखी थी। अब तो खैर बहुत सारी वो मछलियां जो हैं वो आपको एक्वेरियम्स के अंदर बड़े बड़े जो दुबई वगैरह मॉल के अंदर एक्वेरियम्स हैं वगैरह वहां पे नजर आ जाती हैं, लेकिन उनके अलावा भी इतनी इतनी जो है ना वो इनकी फैमिलीज हैं और इतने टाइप्स हैं जो कि कभी भी एक्वेरियम्स के अंदर ये जमा ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने जब ये बात सुनी ना तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उस वक्त तक जरा हो चुका था, भैया आपको बताया कि फर्क पड़ चुका था, तो ये आज उस वक्त सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने जो इतनी हसीन मखलूक जो है जो कि अंडर वाटर बनाई है, तो उस मखलूक को तो ये जो बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं ये तो देखते ही नहीं है उस मखलूक को, है ना, सिवाय चंद एक के जो कि अंडर सी डाइविंग वगैरह कर रहे हो, राइट। अच्छा, बाकी जो नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियोस बन करके अब लोगों को जो थोड़ी बहुत नजर आ गई है, तो ये तो नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियोज तो पिछले 50-60 साल के अंदर बनी है ज्यादा से ज्यादा, उससे पहले क्या इंसानियत नहीं रहती थी, उससे पहले क्या अल्लाह ताला ने ये मछलियां जो है वो वहां नहीं बनाई हुई थी, तो ये तो नहीं किया ना अल्लाह ने कि देखो इनको तो देखने वाला कोई है नहीं तो मैं इनको सादा सादा सा जल्दी जल्दी करके बना देता हूँ। नहीं, बेहतरीन रंगों और बेहतरीन खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने ओशन फिशेस को बनाया है ना। कोई उसको देख करके अल्लाह ताला की सना करने वाला वहां पे नहीं जाता कि उसको देखेगा और अल्लाह ताला की तारीफ करेगा, ठीक है ना। तो देखो अल्लाह ताला कैसे बेनियाज है ना। अल्लाह ताला को अपनी तारीफों की हाजत नहीं है कोई, है ना। इज नॉट लाइक हम कहते हैं ना माशाल्लाह कुछ खवातीन जो है वो ज्यादा इस बारे में होती हैं कि अप्रिशिएट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, है ना। तो मरे चले जा रहे हैं अप्रिशिएशन के लिए, मरे चले। भाई ठीक है, अप्रिशिएट करें, करना चाहिए, मर्दों को करना चाहिए, लेकिन औरतों को है ना हलक में उंगली दे करके अप्रिसिएशन निकलवानी तो नहीं चाहिए ना। ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप हलक में हाथ डाल करके जो है वो तारीफ निकलवाएं, ठीक है ना। और मर्दों को जो है वो इसके अंदर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए अपना काम अपने एहसन तरीके से करने की, औरतों को भी और मर्दों को भी, ठीक है। तो ये बात इसलिए कही थी कि भाई कुछ लोग मरे जा चले जा रहे होते हैं अप्रिसिएशन के लिए, है ना, तारीफ के लिए। अल्लाह ताला मरे चले जा रहे हैं वाला जो मुहावरा है ना वो अल्लाह ताला के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है ना कोई देखने वाला भी नहीं उन मखलूक को, ठीक है। फरिश्ते तो वैसे ही अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं आसमानों के ऊपर, दुनिया के अंदर जो इतनी मखलूक बनाई है इंसानों और जिन्नों के लिए ना, कौन सा कौन जा करके देख रहा होता है। तो बहरहाल इबरत की निगाह जो होती है ना वो तो भाई उसके लिए आपको मिसालों की जरूरत नहीं है, उसके लिए निगाह की जरूरत है। जब निगाह मिल गई ना तो मिसालें उनकी कोई कमी नहीं है फिर उसके बाद, है ना। एक चींटी को देख करके भी आप इबरत की निगाह, है ना, मक्खी को देख करके भी इबरत की निगाह, ठीक है ना, और हसीन चीज को देख करके भी इबरत की निगाह, और गलाजत को देख करके भी इबरत की निगाह, ठीक है ना। तो इसमें ठीक है, इसी वजह से डांट वाजिब हो गई थी, लेकिन फिर वाजिब में से हमने रुख्सत ले ली, ठीक है। आगे फरमाते हैं कि एक शुभों का जवाब कि सूरह मआरिज में जो आखिरत के दिन को 50,000 साल के बराबर करार दिया है, काना मिकदारुहु 50,000 सना, ठीक है ना, कि उसकी मिकदार जो है ना वो 50,000 साल है। तो इसमें भी दोनों तफसीरें इश्तिदाद और इम्तिदाद की हो सकती हैं कि शिद्दत की वजह से 50,000 साल है या इम्तिदाद की वजह से, ठीक है, कि वाकई वो 50,000 साल जितना लंबा होगा। और हर शख्स की शिद्दत व मुसीबत चूंकि दूसरों से मुख्तलिफ और कमोबेश होगी, कम होगी या बेश यानी ज्यादा होगी, इसलिए वो दिन किसी को 1,000 साल का महसूस होगा और किसी को 50,000 साल का महसूस होगा। और अगर दूसरे मानी लिए जाए, ठीक है, तो इश्तेदाद का क्या मतलब कि डिपेंडिंग ऑन आपके ऊपर क्या हालात हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने लव्ड वंस के दरमियान हैं तो आपको बड़ा कम महसूस होगा वो टाइम, और अगर आप जो है ना वो यानी हेटेड वंस के दरमियान हैं तो वो आपको बड़ा लंबा महसूस होगा। तो ये तो हो गई इश्तेदाद वाली तफसीर, ठीक है ना। अच्छा, इम्तेदाद वाली तफसीर क्या कि अगर दूसरे माने लिए जाए, यानी इम्तेदाद वाले माने लिए जाए, इम्तेदाद का मतलब तो समझ में आता है ना, यानी फिजिकली इतना लंबा, ठीक है। तो अगर दूसरे यानी फिजिकली लंबे वाले माने लिए जाएं कि हकीकतन आखिरत का दिन 50,000 साल का होगा, तो इन दोनों आयतों में बज़ाहिर तआरुज होता है, ठीक है ना। बज़ाहिर तआरुज यानी ये किस किस्म की किताब है भाई, नऊज़ बिल्लाह। शैतान तो शैतान है ना, वो आगे बात भी आ रही है शैतान की बड़ी तफसील के साथ अगली आयात के अंदर। शैतान तो फौरन दिल में ये वसवसा डालता है कि ये किस किस्म की नऊज़ बिल्लाह किताब है, इधर ये लिखा हुआ है उधर वो लिखा हुआ है ना, ये तो इनकन्सिस्टेंसी हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये तो अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, कि भाई अल्लाह की किताब होती तो इनकंसिस्टेंसी कैसे हो सकती थी। ये शैतान का काम है करने का, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने शैतान के जवाब में शैतान के बदले पे किन को नामजद किया है ना, जैसे इलेक्शंस के अंदर एक किसी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है तो दूसरी पार्टी उसके बदले में अपना उम्मीदवार खड़ा करती है इलेक्शंस के अंदर, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जहां शैतान को खड़ा किया हुआ है ना, ठीक है ना, कोई इलेक्शन नहीं है वहां यहाँ पर, लेकिन शैतान को एक काम के लिए खड़ा किया हुआ है, तो शैतान के मद्दे मुकाबिल भी अल्लाह ताला ने किसी को खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। वो रसूलों के दौर में रसूल होते थे और जब रसूलों का दौर खत्म हो गया तो रसूलों के नायब है, ठीक है ना। तो वो जो नायबीन है उन्होंने शैतान के इस वसवसे का जवाब दिया, ठीक है, कि एक में 1,000 साल और दूसरी में 50,000 साल का जिक्र है, तो इसकी तदबीक, यानी देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायक जवाब दे रहे हैं तदबीक करके कि नहीं, ये दोनों अपेरेंटली डिफरेंट लग रहे हैं, जाहिरी तौर पर डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन असल में ये फर्क नहीं है। इसको कहते हैं तदबीक करना, कोरिलेट करना चीजों को आपस में, ठीक है। तो फरमाते हैं कि सैयदी हकीमुल उम्मत कदसरहू ने, ये यानी नायब रसूलों में बड़ा मुकाम है इनका, ठीक है, नायबीन रसूल में बड़ा मुकाम हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो उन्होंने बयानुल कुरान में बयान फरमाई है कि जो अहले इल्म के लिए इल्मी और इस्तिलाही अल्फाज ही में नकल की जाती है, ठीक है, यानी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने फॉर व्हाटएवर रीजन, उन्होंने जो भी उनकी इसमें हिकमत थी या वजह थी, उन्होंने जैसा हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बयान किया ना, वैसे ही यहाँ पे भी बयान कर दिया, उसकी तशरीह नहीं करी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना अपनी जाहिलाना तशरीह कुछ आपके सामने पेश करें ताकि हमें भी बात समझ में आए, आपको भी बात समझ में आए, ठीक है। अच्छा, आप कुछ मैसेजेस आए उनको पहले पढ़ लेते हैं, बच्चे का टाइम खत्म होने वाला है। In fact, one can even say that things under the sea are even more beautiful than most places on land. हाँ, वाकई ऐसे ही है ना, ये वाकई, और under the sea ना सिर्फ ये more beautiful है, बल्कि आपको पता है ना कि जो seas हैं दुनिया के अंदर, water का जो area है वो land के area से ही कितना ज्यादा, यानी जो पूरी की पूरी earth है वो तो 1/4 वाटर है ना, और 3/4 जो है वो पानी है, ठीक है। तो या ये कि 1/3 तो शायद नहीं, 1/4 लैंड है और 3/4 जो है वो पानी है, ठीक है ना। तो यानी लैंड तो है ही इतनी थोड़ी सी, तो अगर ब्यूटीफुल चीजें लैंड पर हैं भी, तो ब्यूटीफुल चीजें जो ओशंस के अंदर हैं वो तो 3 गुना ज्यादा हो गई उनसे, ठीक है। तो वाकई आपने इन बात कही है, ऐसे ही है, और वाकई खूबसूरती के अंदर भी वो ज्यादा ही है। एक्वेरियम्स जब भी हम जो है ना, जब जाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे एक्वेरियम मौजूद है ना, एक्वेरियम जरूर देखना है ना। बच्चों का तो बहाना होता है, असल में हमारा खुद दिल चाह रहा होता है एक्वेरियम को देखने का, ठीक है। बहरहाल क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पे, खवातीन की तरफ, किसी भी चीज को देखकर अल्लाह की तरफ बयान करना, यही कहना चाहते हजरत आप, अल्लाह की तरफ बयान करना, हाँ अल्लाह की बात करना, अल्लाह की तरफ सोचना, जी यही इबरत की निगाह चलाती है। जैसे हजरत पेन थ्रेशहोल्ड होता है, जैसे किसी को ज्यादा दर्द महसूस होता है, इश्तदाद भी वैसे ही होगा। हाँ, हर एक का पेन थ्रेशहोल्ड जो है वो डिफरेंट होता है, ये भी आप कह सकते हैं इसको, और ये भी कह सकते हैं कि हालात जो है वो एक ही बंदे को अच्छे हालात के अंदर वक्त तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है, और उसी बंदे को जिसका कोई पेन थ्रेशहोल्ड सेम ही है लेकिन मुश्किल हालात में जाकर के उसी बंदे को जो है वो लंबा टाइम महसूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और ने लिखा कि जन्नत में पहले दाखिल होना गुरबा के लिए है, लेकिन जो अमीर मोमिनीन है उनके दर्जात जन्नत में गुरबा से बढ़कर होंगे उनके अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने की वजह से। हाँ, ये भी है कि जो अमीर मोमिनीन जो वेल्दी थे, रिच थे, तो उन्होंने जो सदका खैरात किए तो उसकी वजह से उनके जन्नत के अंदर दर्जात बढ़े हुए होंगे। तो ये भी हदीस मुबारका से साबित है, और इसके बारे में फिर आखिर में नबी अलैहि सलाम ने यही फरमाया था कि भाई ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, है ना, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, वैसे भी जन्नत के अंदर जो है ना वो अगर दर्जात अलग अलग भी हुए ना, तो भी जो सॉर्ट ऑफ शाम का टाइम होगा ना, जैसे शाम का टाइम होता है, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो लोग अपने अपने घरों से मिलकर के एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जन्नत में भी जो है ना वो, अगर कोई ऊपर के दर्जे पर है, कोई नीचे के दर्जे पर है ना, लेकिन इस मौके के ऊपर इकट्ठे हो ही जाएंगे। बहरहाल चले, रमजान में भी शैतान बंद होते हैं और छोटे शैतान खुले होते हैं, पर क्या शैतान इबलीस भी बंद होता है रमजान में? इबलीस से बड़ा और कौन शैतान है? अगर बड़े बंद होते हैं तो फिर इबलीस से बड़ा तो और कोई शैतान ही नहीं है, ठीक है। अमीर के लिए भी बशारत, गरीब के लिए भी बशारत। हाँ, जन्नत तो अमीर मोमिन के लिए भी है, गरीब मोमिन के लिए भी। बहुत से नेक काम करने को दिल चाहता है हमारा, मगर पैसे की मजबूरी की वजह से कर नहीं पाते। नियत का सवाब हमें मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल मिल जाएगा आपको नियत का सवाब। ठीक है, ये जो नियत है ना, ये इतनी पावरफुल चीज है कि जिस तरह आप नियत करती हैं कि मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसका सवाब मिल जाता ना, तो उसका आपको सवाब मिल जाएगा। सोने का पहाड़ की नियत कर लें अभी, मेरे पास सोने का पहाड़ होता ना तो मैं उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देती। आप देखिएगा जन्नत में जाकर के आपको सोने के पहाड़ को खर्च करने का सवाब मिला हुआ होगा। ठीक है ना, ये भी मौजूद है किताबों के अंदर। लेकिन ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज कि जिसके पास पैसे नहीं है और वो कारून जैसे लोगों को देख करके ये सोचता है कि आज मेरे पास भी होते तो मैं भी उनकी तरह की तफरी कर रहा होता, मैं भी उनकी तरह के पैसे उड़ा रहा होता और मजे कर रहा होता। तो अगरचे कि इसने कोई मजे नहीं किए, इसने कोई दुनिया के अंदर जो है फायदे नहीं उठाए, लेकिन इसका हशर जो है ना वो कारून और हामान के साथ होगा। ठीक है, तो भाई ये बात भी कंफर्म है ना, इसके बारे में तो किसी को शुबा नहीं है कि जिसने कारून और हामान जैसी ख्वाहिशात रखी थी तो उसका हशर उनके साथ होगा। तो अल्लाह ताला दूसरी तरफ क्यों कंजूसी करेंगे कि जिसके पास पैसे नहीं थे और उसने जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जैसी ख्वाहिशात रखी थी तो उनका हशर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के साथ क्यों नहीं होगा भाई? उधर कंजूसी, इधर जो है वो खूब उनको सजा के अंदर कोई कंजूसी नहीं और जजा के अंदर कंजूसी नहीं। अल्लाह ताला कंजूस नहीं है, ना सजा में कंजूस ना जजा में कंजूस। ठीक है, अल्लाह ताला तो गनी है और अल्लाह ताला के पास तो नेमतों की कोई कमी नहीं है। जन्नत में कोई बिल्कुल फिक्र ना करें कि जन्नत छोटी ना पड़ जाए कहीं, जन्नत के छोटे पढ़ने की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की क्लास के अंदर इसको जरा समझा समझाया भी था। चले अब ये क्या करें, टाइम तो खत्म हो गया। चंद अल्फाज तो चंद हैं मेरे ख्याल में, हाँ इसमें बहुत तफसील की जरूरत नहीं, बस छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ ये मुकम्मल हो जाएगा। तो फरमाते हैं कि हमने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की ना वही इस्तलाहात के साथ यहाँ पे नकल कर दी। वो क्या है कि ये तफावत, तफावत का मतलब ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है ना 1,000 साल से 50,000 साल तक, इख्तलाफ आफाक के एतबार से हो। ठीक है, आफाक का मतलब क्या होता है कि जो आपके आपके सर के ऊपर जो होराइजन है ना, जो आसमान नजर आता है ना आपको दाएं से लेके बाएं तक और आगे से लेके पीछे तक, है ना, पीछे तो खैर नजर नहीं आता, आगे नजर आता है, दाएं नजर आता है, बाएं नजर आता है, ठीक है ना, इसको आफाक कहते हैं, होराइजन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द होराइजन यू आर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन यू आर इन, आसान अल्फाज में कहें कि आप लोकेशन आपकी कहां पर है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना 1,000 से लेकर के 50,000 साल तक का, ये लोकेशन के डिफरेंस की वजह से होगा। जिस तरह अब उसकी मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह दुनिया में मुअद्दिलुन नहार, मुअद्दिल का जो लफ्ज है अदल से निकला, अदल का मतलब होता है तब्दील करना। ठीक है ना, ये नहफ कर पढ़ने वालों को इससे वास्ता भी पड़ा होता है अदल। ठीक है, तो मुअद्दिलुन नहार, नहार जो है वो दिन के टाइम को कहते हैं, यानी रोशनी वाला टाइम। ठीक है, जिस वक्त सूरज होता है ना उस वक्त वो टाइम नहार कहलाता है, और जब सूरज जो है वो छुप जाता है, ठीक है ना, अंधेरी की वजह से जब सूरज नजर नहीं आ रहा होता, नहीं वो किसी कोट कर रहे हैं आप लोगों से सुना था हमने। ठीक है, कि जब रात क्यों होती है, क्योंकि सूरज तो रात में भी होता है लेकिन अंधेरी की वजह से नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अंधेरी की वजह से तो नहीं नजर नहीं आ रहा होता ना, वो तो छुप चुका होता है जमीन के पीछे, इस वजह से नजर नहीं आ रहा होता। खैर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लैल कहते हैं। रात को जब सूरज नजर नहीं आ रहा होता उसको लैल कहते हैं, और जिस वक्त सूरज नजर आ रहा होता है उसको नहार कह रहे होते हैं। तो मुअद्दिलुन नहार, नहार की हरकत कहीं दो लाबी है, या कहीं दो लाबी है, कहीं हमाइली कहीं रहवी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनको तहकीक कर सकूं कि दो लाबी का क्या मतलब है और हमाइली का क्या मतलब है और रहवी का क्या मतलब है। किसी को पता है तो फील फ्री टू एनलाइटन अस। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन इसकी जरूरत भी इतनी नहीं है इसको समझने के लिए कि भाई जो मुअद्दिलुन नहार है ना उसकी हरकत कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, और इसी वजह से खत्ते इस्तेवा पर, खत्ते इस्तेवा को हमारी इंग्लू जुबान में क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, जो कि जमीन के दरमियान में जो एक लाइन चल रही होती है उसको इक्वेटर कहते हैं, उसको खत्ते इस्तेवा। तो खत्ते इस्तेवा पर एक रात दिन 24 घंटे का होता है, एक रात दिन 24 घंटे का नहीं होता, बल्कि हजरत क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी एक्सप्लेन क्या करेंगे इसको, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिवाइडेड होता है 24 घंटा 12-12 घंटे के अंदर, ठीक है। और अर्ज तिसईन यानी कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल के ऊपर अगर आप चले जाएं, पर एक साल का दिन, एक साल का, तो इसको भी फिर हमें समझाने की जरूरत पड़ेगी कि दिन एक साल का नहीं हो जाता, बल्कि क्या मतलब कि विंटर्स जो होती है ना नॉर्थ पोल के अंदर, तो विंटर में जिस तरह हमारे मुल्कों के अंदर रात लंबी हो जाती है, तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो विंटर होती है ना वहां पर रात इतनी लंबी हो जाती है कि दिन होता ही नहीं, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर आप वहां से नीचे खिसकें तो जो दिन है ना वो चंद मिनटों का दिन होता है, सूरज की रोशनी वाला टाइम चंद मिनटों का होता है, बाकी सारी रात ही रात। और इसी तरीके से जो समर्स होती हैं तो वहां पर समर के अंदर जो है ना वो दिन 24 घंटे या 23 घंटे 23.5 घंटा दिन चल रहा है और रात जो है वो आधा घंटा की रात है, ठीक है ना। तो उसी वजह से फिर वहां पे जो लोग रहते हैं नॉर्वे वगैरह में, तो वहां पे जो मुसलमान है, तो फिर उनकी वीडियोस भी आनी शुरू हुई पिछले चंद सालों में कि जी हमारे यहाँ तो 22 घंटे का रोजा था और हमारे यहाँ तो 23 घंटे का रोजा था, राइट। यूके के अंदर भी 18 घंटे से ज्यादा का रोजा होता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल के करीब है ना। तो क्या फर्क है कि ये दिन लंबा हो गया और इक्वेटर के ऊपर दिन जो है वो बराबर का हो गया, भाई लोकेशन का फर्क है ना, अर्थ में आप किधर लोकेटेड है, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ मकादीर पर मुख्तलिफ होता चला जाता है। इसी तरह मुमकिन है, यानी एहतमाली दर्जे में ये तफसीर बयान कर रहे हैं कि मुमकिन है कि अव्वल शम्स की हरकत जो मुअद्दल के साथ है या मुअद्दल के साथ है, बतौर खर्क आदत व एजाज इस कदर सुस्त हो जाए कि एक उफुक पर 1000 साल का दिन हो और जो उफुक उससे 50 हिस्से हटा हुआ हो, 50 टाइम्स दूर हो, उस पर 50,000 बरस का दिन हो और दरमियान में इसी नस्बत से मुतफावत हो, ठीक है। जैसे कि आपके इक्वेटर के ऊपर जो है वो 12 आवर्स का हो गया, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर गए तो जो है वो दिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, रात थोड़ी सी छोटी हो गई, इस तरह से होते 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 नॉर्थ पोल के ऊपर जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंच गया। उसी तरीके से वहां पर भी यही मामला होगा कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ऐसी जगह पर लोकेट करेंगे या प्लेस करेंगे कि जहां पर जो है ना वो उनका दिन जो है वो 50,000 ईयर्स के बराबर होगा, कुछ को उससे दूर लोकेट करेंगे तो वहां पर दिन जो है वो शायद 40,000 ईयर्स के बराबर हो, कुछ के दिन जो है ना वो 30,000 ईयर्स के बराबर हो, और करते 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 कम होते होते ऐसे भी लोग होंगे जो कि खत्ते इस्तवा पर होंगे, कयामत का दिन वाला खत्ते इस्तवा, अल्लाह नोज क्या उसकी शक्ल होगी, वहां पर दिन जो है ना वो 1000 साल का दिन होगा। तो इससे एक और भी बात समझ में आई कि जो ईमान वाले होंगे ना, ईमान वाले जन्नत में जाने वाले, 1000 साल वाला दिन उनके लिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट है कयामत के दिन के मकदार की, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 50,000, लेकिन ये सब एहतमाली दर्जे में, बस ये एक समझने के हद तक इसको हमने जान लिया, वरना होगा तो वही जो वहां जाकर के पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए कयामत के दिन को आसान बनाए और दुनिया की जिंदगी को भी हमारे लिए आसान बनाए कि हम इसके अंदर अल्लाह को अच्छी तरीके से राजी करने वाले बन सकें। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।